दूसरा सैमुअल बाब 3। साउल के बेटे इशबोसत और दाऊद के दरमियान ये जंग बड़ी देर तक जारी रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दाऊद जोर पकड़ता गया जबकि इशबोसत की ताकत कम होती गई। हिब्रोन में दाऊद के बास बेटे पैदा हुए। पहले का नाम अमनोन था, उसकी माँ अखिनोइम यज़रेली थी। फिर किलियाब पैदा हुआ जिसकी माँ नाबाल की बेवा अबीजेल कर्मिली थी। तीसरा बेटा अभी सलोम था, उसकी माँ माक्का थी जो जसूर के बादशाह तिलमी की बेटी थी। चौथे का नाम अदोनिया था, उसकी माँ हजीत थी। पांचवा बेटा सफतिया था, उसकी माँ अबीताल थी। छठे का नाम इतराम था, उसकी माँ इजला थी। ये छह बेटे हिब्रोन में पैदा हुए। जितनी देर तक इशबोसत और दाऊद के दरमियान जंग रही, उतनी देर तक एबनेर साउल के घराने का वफादार रहा। लेकिन एक दिन इशबोसत एबनेर से नाराज हुआ क्योंकि वो साउल मरहूम की एक दाश्ता से हमबिस्तर हुआ था। औरत का नाम रिस्फा बिन अय्याह था। इशबोसत ने शिकायत की, आपने मेरे बाप की दाश्ता से ऐसा सलूक क्यों किया? एबनेर बड़े गुस्से में आकर गरजा, क्या मैं यहूदा का कुत्ता हूं कि आप मुझे ऐसा रवैया दिखाते हैं? आज तक मैं आपके बाप के घराने और उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए लड़ता रहा हूं। मेरी ही वजह से आप अब तक दाऊद के हाथ से बचे रहे हैं, क्या ये इसका मुआवजा है? क्या एक ऐसी औरत के सबब से आप मुझे मुजरिम ठहरा रहे हैं? अल्लाह मुझे सख्त सजा दे अगर अब से हर मुमकिन कोशिश न करूं कि दाऊद पूरे इसराइल और यहूदा पर बादशाह बन जाए। शुमाल में दान से लेकर जुनूब में बेरसबा तक आखिर रब ने खुद कसम खाकर दाऊद से वादा किया है कि मैं बादशाही साउल के घराने से छीन कर तुझे दूंगा। ये सुनकर इशबोसत एबनेर से इतना डर गया कि मजीद कुछ कहने की जुरत जाती रही। एबनेर ने दाऊद को पैगाम भेजा, मुल्क किसका है? मेरे साथ मुआहदा कर लें तो मैं पूरे इसराइल को आपके साथ मिला दूंगा। दाऊद ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आपके साथ मुआहदा करता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर, आप साउल की बेटी मीकल को जो मेरी बीवी है मेरे घर पहुँचाएँ, वरना मैं आपको नहीं मिलूँगा। दाऊद ने इशबोसत के पास भी कासिद भेजकर तकाजा किया, मुझे मेरी बीवी मीकल जिससे शादी करने के लिए मैंने 100 फिलिस्तीनियों को मारा वापस कर दें। इशबोसत मान गया। उसने हुक्म दिया कि मीकल को उसके मौजूदा शौहर फिलतियल बिन लैस से लेकर दाऊद को भेजा जाए, लेकिन फिलतियल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वो रोते रोते बहुरीम तक अपनी बीवी के पीछे चलता रहा। तब एबनेर ने उससे कहा, अब जाओ, वापस चले जाओ। तब वो वापस चला गया। एबनेर ने इसराइल के बुजुर्गों से भी बात की, आप तो काफ़ी देर से चाहते हैं कि दाऊद आपका बादशाह बन जाए, अब कदम उठाने का वक्त आ गया है, क्योंकि रब ने दाऊद से वादा किया है, अपने खादिम दाऊद से मैं अपनी कौम इसराइल को फिलिस्तीनियों और बाकी तमाम दुश्मनों के हाथ से बचाऊंगा। यही बात एबनेर ने बिन्यामीन के बुजुर्गों के पास जाकर भी की। इसके बाद वो हिब्रून में दाऊद के पास आया ताकि उसके सामने इसराइल और बिन्यामीन के बुजुर्गों का फैसला पेश करे। 20 आदमी एबनेर के साथ हिब्रून पहुंच गए। उनका इस्तकबाल करके दाऊद ने ज़ियाफ़त की। फिर एबनेर ने दाऊद से कहा, अब मुझे इजाज़त दें, मैं अपने आका और बादशाह के लिए तमाम इसराइल को जमा कर लूँगा ताकि वो आपके साथ अहद बांध कर आपको अपना बादशाह बना लें। फिर आप उस पूरे मुल्क पर हुकूमत करेंगे जिस तरह आपका दिल चाहता है। फिर दाऊद ने एबनेर को सलामती से रुखसत कर दिया। थोड़ी देर के बाद योआब दाऊद के आदमियों के साथ किसी लड़ाई से वापस आया। उनके पास बहुत सा लूटा हुआ माल था, लेकिन एब्नेर हिब्रोन में दाऊद के पास नहीं था, क्योंकि दाऊद ने उसे सलामती से रुखसत कर दिया था। जब योआब अपने आदमियों के साथ शहर में दाखिल हुआ तो उसे इत्तला दी गई। एब्नेर बिन नेर बादशाह के पास था और बादशाह ने उसे सलामती से रुखसत कर दिया। योआब फौरन बादशाह के पास गया और बोला, आपने ये क्या किया है? जब एब्नेर आपके पास आया तो आपने उसे क्यों सलामती से रुखसत किया? अब उसे पकड़ने का मौका जाता रहा है। आप तो उसे जानते हैं, हकीकत में वो इसलिए आया कि आपको मनवा कर आपके आने जाने और बाकी कामों के बारे में मालूमात हासिल करे। योआब ने दरबार से निकलकर कासिदों को एब्नेर के पीछे भेज दिया। वो अभी सफर करते करते सेरा के हौज पर से गुजर रहा था कि कासिद उसके पास पहुंच गए। उनकी दावत पर वो उनके साथ वापस गया, लेकिन बादशाह को इसका इल्म न था। जब एब्नेर दोबारा हिब्रोन में दाखिल हुए तो योआब शहर के दरवाजे में उसका इस्तकबाल करके उसे एक तरफ ले गया, जिसे वो उसके साथ कोई खुफिया बात करना चाहता हो। लेकिन अचानक उसने अपनी तलवार को दरमियान से खींचकर एब्नेर के पेट में घोंप दिया। इस तरह योआब ने अपने भाई असाहेल का बदला लेकर एब्नेर को मार डाला। जब दाऊद को इसकी इत्तला मिली तो उसने ऐलान किया, मैं रब के सामने कसम खाता हूँ कि बेकसूर हूँ, मेरा एब्नेर की मौत में हाथ नहीं था। इस नाते से मुझ पर और मेरी बादशाही पर कभी भी इल्ज़ाम न लगाया जाए, क्योंकि योआब और उसके बाप का घराना कसूरवार हैं। रब उसे और उसके बाप के घराने को मुनासिब सज़ा दे। अब से अबद तक उसकी हर नस्ल में कोई न कोई हो जिसे ऐसे जख्म लग जाएं जो भर ना पाए। किसी को कोढ़ लग जाए, किसी को बैसाखियों की मदद से चलना पड़े, कोई गैर तबई मौत मर जाए, या किसी को खुराक की मुसलसल कमी रहे। यूं योआब और उसके भाई अबीशै ने अपने भाई असाहेल का बदला लिया। उन्होंने एब्नेर को इसके लिए कत्ल किया कि उसने असाहेल को जिबोन के करीब लड़ते वक्त मौत के घाट उतार दिया था। दाऊद ने योआब और उसके साथियों को हुक्म दिया, अपने कपड़े फाड़ दो और टाट ओढ़कर एब्नेर का मातम करो। जनाजे का बंदोबस्त हिब्रोन में किया गया। दाऊद खुद जनाजे के ऐन पीछे चला। कब्र पर बादशाह ऊंची आवाज से रो पड़ा और बाकी सब लोग भी रोने लगे। फिर दाऊद ने एब्नेर के बारे में मातमी गीत गाया, हाय एब्नेर, क्यों बेदीन की तरह मारा गया? तेरे हाथ बंधे हुए न थे, तेरे पांव जंजीरों में जकड़े हुए न थे। जिस तरह कोई शरीरों के हाथ में आकर मर जाता है, उसी तरह तू हलाक हुआ। तब तमाम लोग मजीद रोए। दाऊद ने जनाजे के दिन रोज़ा रखा। सब ने मिन्नत की कि वो कुछ खाए, लेकिन उसने कसम खाकर कहा, अल्लाह मुझे सख्त सजा दे अगर मैं सूरज के गुरूब होने से पहले रोटी का एक टुकड़ा भी खा लूं। बादशाह का ये रवैया लोगों को बहुत पसंद आया। वैसे भी दाऊद का हर अमल लोगों को पसंद आता था। यूं तमाम हाजरीन बल्कि तमाम इसराइलियों ने जान लिया कि बादशाह का एब्नेर को कत्ल करने में हाथ ना था। दाऊद ने अपने दरबारियों से कहा, क्या आपको समझ नहीं आई कि आज इसराइल का बड़ा सूरमा फौत हुआ है? मुझे अभी अभी मसा करके बादशाह बनाया गया है, इसलिए मेरी इतनी ताकत नहीं कि जरूयाह के इन दो बेटों योआब और अभिषेक को कंट्रोल करूं। रब उन्हें उनकी इस शरीर हरकत की मुनासिब सजा दे।